आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मशिया। मेरा नाम शासे लुइस है और आज जो है वो अदार 5577 है और हमारा जो कैलेंडर है उसके मुताबिक 5/3/2017 है। हम एक बार फिर से जो है वो एस्तर की किताब का मुताला शुरू कर रहे हैं। अगर आपने जो है वो पिछले मुताले नहीं सुने हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप पहले उनको जरूर सुने, ऑडियोज को सुने, वीडियो को देखें ताकि आप जो है जान सकें कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। और आपको जो है मेरी वेबसाइट www.backtotorah.com पर इसके ऊपर एसएफ की किताब के ऊपर लिखे हुए आर्टिकल भी मिल जाएंगे। सो पिछली दफा जो था हम लोगों ने दूसरे बाब का मुताला किया था। हम लोगों ने ये जाना था कि एसर को जो था वो बादशाह ने अपनी मलका के तौर पर चुना था और आखिर में जो था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मुर्द की को जो था वो इल्म हुआ कि बादशाह को कोई कत्ल करना चाह रहे हैं और बादशाह मुर्द की ने ये वाली बात जो थी एसर को बताई और एसर ने आगे बादशाह को मुर्दकी का नाम लेकर जो था ये बात बताई और जब बात सच साबित हुई तो बादशाह ने उन दोनों को जो था जो कि बादशाह के खिलाफ थे उनको मरवा डाला। आज जो है हम तीसरे बाब से पढ़ने लगे हैं एस्थर चैप्टर 3:1। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन बातों के बाद जब खूबसूरत बादशाह ने एजाजी हमदाता के बेटे हमाम को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमाम के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था, पर मर्द की ना झुकता था ना उसकी ताजीम करता था। और लिखा हुआ है कि तीसरी आदमी लिखा हुआ है तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दगी से कहा तो क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है, जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी ना मानी तो उन्होंने हमान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दगी की बात चलेगी या नहीं क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूं। जब हमान ने देखा कि मुर्द की ना झुकता ना मेरी ताजीम करता है तो हमान गुस्सा से भर गया लेकिन फकत मुर्द की पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचा समझा क्योंकि उन्होंने उसे मुर्द की कौम बता दी थी। इसलिए हमान ने चाहा कि मुर्द की कौम यानी सब यहूदियों को जो सूरज की पूरी ममलकत में रहते थे हलाक करे। ओके सो अब जो है वो हम तीसरे बाब की इन आयात को पढ़ रहे हैं और इसमें जो है वो हमें अजाजी हमदाता के बेटे हमान के बारे में तारुफ दिया जा रहा है कि हमान जो था वो ए अजाजी था। आखिर इसमें क्या खास बड़ी बात है। सो हमें जो ये जो अजाज के बारे में जो है पहला सैमुएल उसके 15वें बाब में जो है जिक्र मिलता है। मैं पहला सैमुएल 15वें बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करूंगी। वहां पर लिखा हुआ है रबुल फौज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालीक ने इसराइल से क्या किया और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनके मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर बल्कि मर्द और औरत नन्हे बच्चे और शीर खवार गाय बैल और भेड़ बकरियां ऊंट और गधे सबको कतल कर डालना। ये जो है ये कहानी जो है ये आप पहले सैमुएल 15वें बाब में आप पढ़ सकते हैं मगर मैं आगे पढ़ने लगी हूँ 7वीं आयत से। और साहुल ने अमालिकियों को हवेला से शोर तक जो मिस्र के सामने मारा और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जीता पकड़ा और सब लोगों को तलवार की धार से नेस कर दिया लेकिन साहुल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा और उनको नेस्त करना ना चाहा, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और नकम्मी थी नेस्त कर दिया। अफसोस की बात है कि साउल बादशाह जो था, जो कि बनी इसराइल का पहला बादशाह था, उसने खुदावंद खुदा का हुक्म जो था वो नहीं माना। उसको जो था उसने क्या किया कि जो खुदावंद ने कहा था कि सब कुछ को जो है वो नेस्त कर डालना, कत्ल कर डालना, लेकिन उसने जो था लिखा हुआ है कि अच्छी अच्छी अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों और जो अच्छी अच्छी चीजें उनको लगी उसको, साउल बादशाह को और उसके लोगों को लगी थी, उन्होंने उसको जीता रहने दिया था, मगर जो नाकिस और नकम्मी थी उसने उनको तबाह कर डाला था। गो के बाद में जो है वो हमें लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि पहले सैमुअल 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से जो है वो लिखा हुआ है कि साउल ने सैमुअल से कहा, मैंने तो खुदावंद का हुक्म माना और जिस राह पर खुदावंद ने मुझे भेजा चला और अमालीक के बादशाह अजाज को ले आया हूं और अमालीकियों को नेस्त कर दिया, पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था ले आए ताकि जल जलाल में खुदावंद तेरे खुदा की के हजूर कुर्बानी करें। साउल बादशाह जो था उसने पहले से ही एक तरह से सैमुअल नबी को जो था वो ये कह दिया कि ये जो भेड़ बकरियां गाय बैल वगैरह जो है ये खुदावंद तेरे खुदा के हजूर की कुर्बानी के लिए है। और उसके जवाब में जो था सैमुअल नबी ने कहा कि 22वीं आयत में लिखा हुआ है, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 22, सैमुअल ने कहा, क्या खुदाबंद सोखनी कुर्बानियों और जबीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदाबंद का हुक्म माना जाए? देख, फर्मा बदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है इसलिए उसने भी तुझे रद्द कर दिया है, किया है कि बादशाह ना रहे। सो ये जो था ये मुख्तसर सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि अजाज कौन था। गो के सैमुअल नबी ने जो था वो अजाज को मार डाला, मगर रबियों के जो है रवायात के मुताबिक जो वो कहते हैं, जो वो बताते हैं कि लिखा हुआ है कि जब साउल बादशाह जो था वो अजाज के महल में पहुंचा था तो उसने उसको उसकी बीवी के साथ जो था वो बिस्तर में देखा था और उसने जो था वो एक तरह से ऐसे किया था कि ओके जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तुम फारिग हो जाओ। तो उसने जो था वो खुदावंद के हुक्म को पूरा नहीं किया था। उसकी बीवी जो थी, अजाज की बीवी जो थी, वो भाग गई और लिखा हुआ है कि जो रबियों की तालीम के मुताबिक जो है वो ये है कि अजाज की बीवी जो थी वो हामला हुई थी और उसके जो था वो आगे बच्चा हुआ था। सो अजाज की जो नस्ल जो थी वो फिर भी बच गई। और हम लोगों को जो है ये इन्हीं बातों से अंदाजा हो जाता है कि साउल बादशाह ने तमाम को जो था कत्ल करना जो था वो मुनासिब नहीं समझा था। उसने अपनी मर्जी के मुताबिक करना पसंद किया था, ना कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक। और जो सैमुअल नबी की जो बहुत खास बात जो मुझे दिखाई देती है वो जो सैमुअल नबी ने कहा वो ये था कि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। सो अमूमन हम नहीं सोचते हैं कि हम किस तरह से जो है वो खुदाबंद के खिलाफ सरकश बन रहे हैं, मगर खुदाबंद जो है वो इस सरकशी को जो है ऐसे ही देखते हैं। खुदाबंद की हजूर में जो है हमारी बगावत और जादूगरी जो है वो बराबर है। खुदाबंद की नजरों में जो है हमारी सरकशी जो है वो मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश की तरह ही है। सो ये जो चीज जो है ये हम लोगों को सोचने की जरूरत है। मूर्त की जो था उसने गो के बादशाह के तमाम मुलाजिम जो थे वो हमान के आगे झुकते थे, मगर मुर्दकी ने जो था वो हमान के आगे झुकना नहीं पसंद किया था। गो के बहुत सी बातें हैं जिनकी तफसील में जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मगर ये है कि उसने जो था वो हमाम को जो था वो उस किस्म की झुक कर ताजीन देने से जो था अवॉइड कर रहा था। और बादशाह के जो मुलाजिम जो थे मुर्द की हमाम ने शायद खुद नहीं नोट किया था, मगर जो मुर्द की के साथ बाकी मुलाजिम थे उनको ये नहीं पसंद आया था कि वो तो हमान के आगे झुकते हैं मगर मुर्द की नहीं झुकता। उसने जो था वो उन्होंने जो था वो पहले तो जो था वो मुर्द की से सवाल किया कि क्या आखिर क्या वजह है कि तू क्यों नहीं हमान के आगे झुकता है। और जब मुर्तकी ने जो था उनके कहने के बावजूद भी हमान के आगे झुकना नहीं पसंद किया, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमान को जो था वो बता दिया ये देखने के लिए कि मुर्तकी की बात जो है वो आखिर मुर्तकी क्योंकि अभी तक जो है वो हमान की नजर उस पर नहीं पड़ी है, तो देखें कि क्या बनता है। और फिर क्या हुआ कि हमान ने जो था वो इस बात को पे गौर करना शुरू किया कि बाकी मुर्दकी जो है वो ना तो उसके आगे झुकता है और ना उसकी ताजीम करता है। इस वजह से जो था वो हमान को गुस्सा चढ़ा, मगर उससे ज्यादा गुस्सा जो था वो उसको इस बात का चढ़ा था कि मुर्दकी जो है वो यहूदी है। छठी आयत में जो है वो हमने पढ़ा था, लेकिन फर्क मुर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचा समझा। वो जो बादशाह अजाज का जो बीज जो था, अमालीकी कौम जो थी, जो उस उनका जो गरूर जो था और जो कमजोर को जो है कमजोर पर हमला करना जो है अपना एक तरह से फर्ज समझकर हमला करते आए हैं, अमालीकी कौम जो है वो बेसिकली जो है वो यही उनकी जो जो स्पिरिट जो है उनकी जो रूह जो है वो यही है कि वो जो है वो अपने से कमजोर के ऊपर जो है वो हमला करते हैं। तो खुदावन चूंकि कौमों में जो था वो पहली कौम जो थी वो अमालीकी थी। मैंने आपको बताया ही नहीं कि अमालीकी कौम जो है वो आखिर थी असल में कौन थी। अमालीकी कौम जो थी वो यहूदियों के अपने ही रिश्तेदार थे। कोई उनसे जो था वो अलैदा नहीं थे। लिखा हुआ है पैदाइश के 36वें बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है, और तिम्ना ईसाऊ के बेटे एलीफस की हरम थी और एलीफस से उसके अमालीक पैदा हुआ। अमालीक जो था वो याकूब के भाई ईसाऊ के बेटों में से था। गो के जो उसका जो बेटा जो था एलेफेज उसने हरम रखी हुई थी और वो उसकी औलाद है, मगर ये है कि अमालीक जो है वो कोई और नहीं बल्कि याकूब के जो उन रिश्तेदारों में से जो कि शायद नहीं होने चाहिए थे, सो वो उन रिश्तेदारों में से थे। कहने को हमान जो है वो ईसाऊ की औलाद, मगर ये है कि वो यहूदियों से नफरत करने वालों में से थे। उसने जो था ये नहीं करने की कि नहीं कि मैं जो हूं मैं सिर्फ और सिर्फ मुर्तकी को जो हूं उसके रुतबे से खत्म कर डालूं। बादशाह के फाटक पर बैठने का मतलब जो है वो यही है कि आपका जो मुकाम जो है वो आला मुकाम है। सो मुर्तकी जो कि बादशाह के फाटक पर बैठा करता था इस बात को जाहिर करता है कि बात उसका जो मुकाम जो था वो आला मुकाम था, वो बादशाह के मुलाजिमों में से था। और बादशाह के साथ ही वो उन मुलाजिमों में से था जो कि चूंकि बादशाह ने हमान को बरतर किया था, तो वो उन मुलाजमों में से था जो कि हमान के अंडर आते थे। मगर हमान को जो था ये वाली बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि वो जो है वो बात एक्सक्यूज मी उसकी इज्जत नहीं कर रहा है। एक आयत जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा कि उसने सिर्फ मुर्दगी को ही नहीं बल्कि पूरी कौम को जो था खत्म हलाक करने की सोची। जबूर 30वां बाब और उसकी 5वीं आयत। तीस बाब की 5वीं आयत में Psalms 30:5 लिखा हुआ है, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। सो ये जो सुबह का यहाँ पर जो लफ्ज है वो इंग्लिश में डॉन बनता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, वो जबकि अभी अंधेरा ही हो। और ये जो आयत जो है ये खुदावंद के बारे में बयान की जा रही है कि खुदावंद का गुस्सा जो है वो सिर्फ दम भर का है, मगर उसका करम जो है वो उम्र भर का रहता है, उम्र भर के लिए है। और रात को जो है तारीकी के वक्त जो है वो तो शायद रोना पड़ता है, मगर सुबह के वक्त जो है जबकि अभी अंधेरा जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ होता, मगर सुबह जो है वो होने लगती है, तो खुशी की नौबत आती है। सो बेशक मुर्दगी के लिए जो था, मुर्दगी को मारने के लिए, यहूदी कौम को मारने के लिए हमान जो था वो प्लान बनाना शुरू कर रहा था कि कैसे जो है वो मुर्दगी की इस हरकत की वजह से जो है वो कैसे उन तमाम को जो है वो नाबूद करे। मगर खुदावंद ने जो था, चूंकि खुदावंद बेशक के अपने लोगों की नजरों में से छुपा हुआ था, मगर खुदावंद ने उसके लिए उनको बचाने के लिए जो प्लानिंग जो थी वो पहले से ही शुरू करती थी। और जो यहूदी दानिश्वर रशी जो है उनके मुताबिक जो है वो यही है कि खुदावन जो है वो मुसीबत के आने से पहले ही जो है तैयारी, उसका जो इलाज जो है वो शुरू कर देते हैं कि कैसे मुसीबत से जो है वो छुटकारा हासिल करना है। 7वीं आयत से हम पढ़ते हैं Esther 3:7। और अक्सुरस बादशाह की सल्तनत के 12वें बरस के पहले महीने से जो निशान महीना है वो रोज बरोज और माह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हमान के सामने पूर यानी कुर्रा डालते रहे। हर महीने जो था वो कुर्रा डालते थे। और जो पूरिम का जो त्योहार जो है वो बेसिकली जो कुर्रा डाल, उसका माने जो है वो कुर्रा डालना ही बनता है। वो कुर्रा डालते थे, किसके कुर्रा डालते थे कि ताकि वो जो है वो हमान जो है वो आखिर में जो है वो यहूदी कौम से जो है छुटकारा हासिल कर सके। लिखा है, और हमान ने अक्सुरस बादशाह से अर्ज की, गो कि ये कुर्रा डालने के जो है इसकी डिटेल में मैं भी शायद हम अगली दफा जाएं, मगर वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं आगे पढ़ना चाहूंगी। Esther 3:8। और हमान ने अक्सुरस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की मुमलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है, उसके दस्तूर हर कौम से नराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं, सो उनके रहने देना सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदेमंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर यहूदियों के दुश्मन अजाची हमदाता के बेटे हमान को दी। और बादशाह ने हमान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। 12 महीने तक, कि वो अदार के महीने तक उन्होंने जो था वो कुरा डालते आए वो जो है वो बादशाह के सामने जो है वो जाएं और बादशाह से जो है वो फरियाद करें। और हमान ने जो था बिलाकर बादशाह से फरियाद की और उनके मुताबिक उसके मुताबिक जो था वो ये था कि सब सूबों में एक कौम है जो कि सब कौमों के दरमियान में फैली हुई है, मगर उनके जो दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन को नहीं मानते। उसने जो था बाग को जो था वो कुछ इस तरह से पेश किया था कि वो लोग जो है वो ऐसे लोग हैं जिनके अपने ही दस्तूर है, वो अपने ही रस्म रवायात के मुताबिक चलते हैं, वो बादशाह के कवानीन को नहीं मानते हैं, वो दुनिया के बादशाह की जो है, क्योंकि आपको शायद याद हो कि मैंने एक सूरज का जो था वो माने शुरू में जो था वो मैंने बताया था कि उसके नाम का जो माने जो है वो ऐसा बनता है कि वो जो है वो आखिर और शुरू है, जो कि दुनिया को जाहिर करता है। So, वो दुनिया की ये जो कौम जो थी, यहूदी कौम जो थी, उनकी नजर में वो कौम थी जो कि दुनिया की रस्म रवाज को नहीं मानती है। और हम लोगों को जो है वो खुदावंद ने जो है खुद भी अपने कलाम में जो है अपने लोगों के लिए खुदावंद ने यहूदी कौम के लिए खुदावंद ने जो है वो ये कहा है कि वो तमाम कौमों में जो है वो एक पाक कौम है, वो जो है वो खुदावंद के काहिन है। और यही चीज जो है वो हम नए अहदनामे में बिलीवर्स के लिए पढ़ते हैं। मगर मसीही कौम जो है वो मसीहत से तो जुड़ गई है, मगर यहूदियों से जो है वो अभी तक दूर है। सो कहने को जो है मसीही कौम जो है वो मुकम्मल तौर पे यहूदी कौम का हिस्सा नहीं बन गया, मगर मसीह के नाम के साथ जुड़ने की सबब से ही उनके ऊपर भी मुसीबतें आ रही हैं। सो अभी भी जो है लोगों को जो है वो यहूदी कौम जो है वो नराली कौम ही लगती है कि उनके जो दस्तूर जो है वो बिल्कुल हर एक दूसरी कौम से जो है बिल्कुल फर्क है। सो उनको जो है वो गैर कौमों को जो है वो ये लगता है कि उनका रहना जो है वो किसी तरह से भी फायदेमंद नहीं है। और अक्सूरस बादशाह जो था उसने हमान की ये बात मान ली। उसने जो था वो चांदी, आपको खुद को भी पता होगा कि रिडेम्पशन का सिंबल है, उसने बादशाह ने जो था अपने हाथ से अंगूठी उतार कर यहूदियों के दुश्मन अजाजी हमदाता के बेटे के हमान को दे दी। सो बादशाह ने जो था अपना जो अख्तियार जो था कि खत जो है वो कैसे हुक्म जो है वो कैसे जो भी लिखा जाएगा हमान जो है वो उसके ऊपर बादशाह की अंगूठी से जो है वो साइन कर सकता है, क्योंकि उस वक्त जो था अंगूठी का इस्तेमाल किया जाता था सिग्नेचर के तौर पर। और फिर जो है वो हम पढ़ते हैं 12वीं आयत से जो है बादशाह ने जो था 11वीं आयत में हमान को जो था वो ये कहा था कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करें। सो बादशाह ने बेसिकली हमान को खुली इजाजत दे दी थी कि जैसे चाहे वो उनसे करना चाहे वो कर सकता है। बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को, सो पहला महीना जो है वो कलामे मुकद्दस में कौन सा है, निसान का महीना है, और उसकी 13वीं तारीख से जो था वो बादशाह के मुंशी जो थे वो बुलाए गए, और जो कुछ हमारे बादशाह के नवाबों और हर सूबे के हाकमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया उसके मुताबिक लिखा गया। सुबह सुबह के हरूफ और कौम कौम की जुबान में शाही अक्सूरस के नाम से ये लिखा गया और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई, और हर कारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान क्या बुढ़े क्या बच्चे क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबा में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाए। पहले महीने से लेके जो था चूंकि उस जमाने में जो था सूबों में सुबह सुबह तक जो है वो खतूत को भेजना कोई आसान काम नहीं था, तो बात को जो फैलाना जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था, मगर ये था कि इसलिए उन्होंने जो जो तारीख जो चुनी थी वो निशान के महीने 13 तारीख को जो था ये हुक्म जारी हुआ था, मगर उन्होंने 12 तारीख के तेरी तेर 12वें महीने यानी कि अदार के महीने की 13 तारीख को जो था यहूदियों के खिलाफ ये मंसूबा बनाया था। और बादशाह के जो के हुक्म से जो थे वो हरकारे जो थे फौरन रवाना हुए, और लिखा हुआ है कि वो हुक्म जो था कसरे सोसन में दिया गया, और बादशाह और हमान मैं नोशी करने को बैठ गए, पर सोसन शहर परेशान था। बादशाह और हमान मिलकर तो मैं नोशी के लिए बैठ गए, मगर उन्होंने जो था बाकी तमाम लोगों को जो था वो परेशान कर डाला था। और खास सबब परेशानी का खास सबब उन लोगों के लिए था, यहूदी कौम के लिए था, क्यों? क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि वो अपने आप को जो है कैसे इस हुक्म से जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। मैं फिलहाल के लिए जो हूँ ये इन इस तीसरे बाब की 15वीं आयत तक जो हम जितना हम लोगों ने पढ़ लिया, एक्चुअली ये चैप्टर का एंड है। हम जो है अपने इस मतलब को यहीं पर खत्म करते हैं, और खुदावन ने चाहा तो कल जो है वो हम चौथे बाब से जो है इसका मुताला करना शुरू करेंगे। अगर आपको इब्रानी कैलेंडर का इल्म नहीं है और मेरा आपने ऑडियो नहीं सुना हुआ इसके ऊपर, तो मैं आपको कहूंगी कि ऑडियो या वीडियो जो है वो जरूर देखें, क्योंकि मैंने इब्रानी कैलेंडर को जो है वो समझाने की कोशिश किया है। हमारा अगर हम खुदावंत के कलाम को जानना चाहते हैं, खुदावंत के दिनों को जानना चाहते हैं, तो हमें इब्रानी कैलेंडर को जानने की जरूरत है। और अगर हम इब्रानी कैलेंडर को नहीं जानते तो हम बहुत सी बातों को जो है मिस कर जाएंगे। निसान का महीना जो है वो महीना था जब खुदावंद ने अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल कर उनको जो था ईद फसा से मुतलिक अहकाम दिए थे। पहले निसान की 13वीं तारीख को यानी कि अगले दिन जो था वो यहूदियों के लिए जो था वो ईद फसा की तैयारियां शुरू होने वाली थी, मगर उन लोगों के लिए जो था वो यहूदी कौम के लिए जो था ईद फसा की तैयारियों की बजाय जो था वो परेशानियों की बातें बन गई थी। इन तमाम बातों को जो है हम अगले चैप्टर में जरूर जानने की करेंगे क्या हुआ। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशिया।